سلام الله عليكم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وإطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا ومقتدانا صاحب العصر والزمان، أجل الله تعالى فرجه الشريف، وعلى الخصوص القمر الخامس الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، ولعنة الدائم على أعدائهم من آن إلى قيام يوم الدين. بہت بہت شکریہ آپ سب کو. ماہ مبارک رجب اور موالید رجب اور میلاد رجب بہت بہت مبارک ہو، خاص کر آسمان امامت و ولایت کے پانچویں نور ملکوتی حضرت امام باقر علیہ الصلات والسلام کی ولادت باسعادت بہت مبارک ہو. کئی مناسبتیں اکٹھی بھی ہیں، شب جمعہ بھی ہے، ماہ رجب بھی ہے، اور امام علیہ السلام کا جشن بھی ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ کہ آپ لوگ رجب کے بابرکت مہینے سے واقف ہیں، اور اس مہینے کو جو کہ ایک در حقیقت ایک گراؤنڈ فراہم کر رہا ہوتا ہے ماہ رمضان کے لیے یہ دونوں مہینے، اور دوسری جانب یہ مہینہ جہاں ایک طرف اسی لیے استغفار و توبہ کا مہینہ قرار دیا ہے، اور دوسری طرف یہ مہینہ مہینہ ولایت و امامت بھی ہے، اور یہ مہینہ استقبال ماہ رمضان کی جو ہے تیاری کا مہینہ بھی ہے، اور اسی لیے اس مہینے کے شروع ہوتے ہی ہمیں یہ جو ہے ہم سے کہا گیا کہ آپ اس مہینے میں جو دعا پڑھیں، خاص کر اپنی نمازہائے فریضہ کے بعد، تو اس میں فرمایا یا من ارجو لکل خیر، یعنی خیر کا مہینہ ہے، لہذا خیر کی آرزو رکھیں اس مہینے میں، شر و شرارت سے بچاؤ کی اس مہینے میں تربیت حاصل کریں، روحانی معنوی فکری عقلی ہر لحاظ سے. اور فرمایا کہ دیکھیں کم عمل میں زیادہ ثواب ملے گا اس مہینے کے اندر، من یعطی الکثیر بالقلیل، یعنی بہت تھوڑے سے بھی اگر ہم اعمال کرتے ہیں، ایک صلوات اگر بھیجتے ہیں، تو اس کا اجر و ثواب جو ہے اب کئی گنا زیادہ ہو چکا ہے، اور ایک اگر ذکر اللہ کرتے ہیں تو اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ کثیر میں ہے، من یعطی الکثیر بالقلیل ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس مہینے کی فیوزات سے جو ہے انشاءاللہ تعالی کما حقہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور بہرمند ہوں گے. ہماری آج کی جو گفتگو ہے بنیادی طور پر ایک مختصر سے آغاز کے بعد دو مرکزی ٹاپکس کے ارد گرد سراؤنڈ میں ہوگی، لیکن یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور جڑے ہوئے ہیں، اور بہت اہم ہے، کیونکہ پہلا جو اس کا حصہ ہے وہ ایک سوال ہے جو کہ ایک انٹلیکچوئل اور پڑھے لکھے ایک پی ایچ ڈی کرنے والے جوان کی جانب سے ہوا تھا، اور جو امام سے ہی ریلیٹڈ ہے، لہٰذا البتہ دیگر ائمہ کے ساتھ بھی ریلیٹڈ ہو سکتا ہے، حتیٰ نبیوں کے ساتھ بھی. تو اس جواب اس کا جو اس سوال کا ہم جواب تلاش کریں گے، اور دوسرے حصے کی طرف ہم امام طیب و طاہر کی ذاتی حیات مبارکہ اور اجتماعی سیاسی سیرت مطہرہ پر انشاءاللہ ہم تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہماری اپنی ملی زندگی میں مشعل راہ بن سکے. آغاز کریں گے اس نورانی کلمہ سے اور جملے سے جو امام عالی مقام نے ہی فرمایا ہے، فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. قرآن مجید کی آیت ہے، اور اس آیت کے ضمن میں ہم آگے بڑھیں گے اور امام عالی مقام کے نورانی کلمات کو اس میں جو ہے تلاش کریں گے، اور ان کی تفسیر اور تشریح کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. پروردگار عالم سے دست بدعا ہے کہ یہ متبرک گھڑیاں اور مبارک گھڑیاں ہم اور آپ کے لیے یقیناً مبارک ہیں، پورے ارض و سما کے لیے مبارک ہیں، اور لہٰذا جو ہے آپ سب کی خدمت میں بھی مبارکباد ہے، تہنیت ہے، تبریک ہے، और इसी तरह हम सब मिलकर पेशगाह है मुकद्दस साहिबुल असल व जमान अजलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ के हुजूर भी मुबारकबाद पेश करते हैं कि मौला और आका इंशाअल्लाह तआला हमारी मुबारकबाद को सुन रहे हैं और वो करीम हैं और करीम के घराने से हैं। यकीनन जवाब भी दे रहे होंगे लेकिन हम सुन नहीं पाते हैं। अफसोस है ये कि हम क्योंकि हमारी समाअत सिर्फ इन कानों तक महदूद है और वो जो नूरानी जवाब है वो इन कानों से इस वक्त कम से कम मुमकिन नहीं है। इंशाअल्लाह ताला जो है अजर व सवाब जो है यकीनन रहेगा और साहिबुल असर व जमान की आपके जहूर में ताजील हो जाए, जल्दी हो जाए। हमारी दुआ ये है और हम अपने फराइज को जल्दी अदा करें कि आपके जहूर में जल्दी और ताजील हो जाए इंशाअल्लाह। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम की इस कुर्रे खाक में तशरीफ लाने के बाद जो आपकी जाहरी हयात तय्यबा है वो 57 तकरीबन साल की बयान हुई है। इसके आसपास थोड़ी सी इख्तलाफ भी हो सकती है, जिसमें से 3 साल 6 महीने का जो अरसा है वो आप अपने दादा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ आपने गुजारी है और इसी में वाकई करबला भी पेश आया कि करबला में भी आप मौजूद थे और इस तरह इस मौजू के ऊपर मुख्तलिफ उलमाए कराम ने गुफ्तगू की है और मुझे भी ये सआदत मिली है, तौफीक मिली है कि गुफ्तगू हम करते रहें। 34 ईयर्स तकरीबन 34 साल आप अपने वालिद मोहतरम हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन व सैयद साजिदीन अलैहिस्सलाम के साथ आपने अपनी हयात मुबारक गुजारी और आपकी अपनी जो ऑफिशियल इमामत का आगाज हुआ तो वो तकरीबन 19 या 19 साल आपका दौरे इमामत बनता है। आपकी इमामत का जो आगाज हुआ है तो वो अल्लाह के रसूल की वफात के तकरीबन 95 साल के बाद यानी तकरीबन 1 सेंचुरी पूरी 1 सदी और सेंचुरी के बाद जो है आपकी दौरे इमामत का जो है आगाज होता है। 95 साल जो है अल्लाह के हबीब को दुनिया से पर्दा किए हुए हो चुके हैं और आपकी विलादत इबादत बासादत से पहले ही अल्लाह के हबीब ने आपको एक लकब अता फरमाया था और यही लकब जो है मशहूर हुआ। वो लकब जो है बाकिर के लकब से याद किया था और दिलचस्प बात यह है कि ये लकब खुद अल्लाह के हबीब से पहले ये हदीस लोह में ये जिक्र आया है, यानी तकरीबन ये कह सकते हैं हदीस कुदसी मिन जानिबिल्लाह है। हदीस लोह असल में लोह यानी तख्ती या शील्ड जिसको हम कहते हैं, तख्ती कह सकते हैं, शील्ड भी आप कह सकते हैं लोह को। तो ये हदीस लोह असल में सैयदतुल निसाइल आलमीन अलैहिस्सलाम की बयान करदा अहादीस में से एक है। ओरिजिनल वही शील्ड या वही तख्ती या वही लोह जो कि ये के बाद दिगर आइमा अलैहिस्सलाम के हवाले होती है और ये जो है शील्ड जो है इस वक्त साहिबुल असर व ज़मान अजल्लाहु ताला फ़र्जहु शरीफ के पास है और ये शील्ड के पीछे भी जो एक मोजिजाती करामती लुत्फ इलाही है वो ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयदुश्शुहदा की जब विलादत बासादत हुई थी तो उस वक़्त खुदा की जानिब से अपने हबीब के लिए नवासे की विलादत या अपने बेटे की विलादत में एक तोहफे के तौर पे ये लोह आई थी। इस लोह के ऊपर अइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम की इमामत और विलायत का तस्करा मौजूद था। बस इमाम अली मकाम का जो नाम मुबारक है बाकिर अलैहिस्सलाम वो अल्लाह के रसूल ने आपकी विलादत से पहले बयान फरमाया और खुदा की जानिब से जो एक तोहफा आया था उसके अंदर पहले से उस शील्ड के अंदर उस तख्ती या लोह के अंदर अइमा अलैहिस्सलाम के नाम मौजूद थे और उसमें इमाम अलैहिस्सलाम का नाम भी मोहम्मद बाकिर के तौर पर मौजूद था। आपकी वालिदा माजिदा हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा इमाम हसन की बेटी थीं, इसलिए आपको हाशिमियन या हाशिमी बैन अल हाशिमियन अलवी बैन अल अलवियन फातिमी बैन अल फातिमियन इस तरह जो सादात कराम के लिए मुख्तलिफ तारीख में अल्फाज इस्तेमाल होते रहे हैं तो उसमें जो है आपको ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता हाशिमियन बैन अल हाशिमियन दो हाशिमियन के दरमियान का हाशमी। मशहूर तरीन लकब वही बाकिर रहा जो कि मशहूर हुआ और बाकिर के जो मानी हैं उलमाए अहले सुन्नत और उलमाए अहले तशय्यो इसके अलावा अरबी जबान और ग्रामेटिकल जो उलूम से वाकिफ हैं, अरबी जबान की जो डिक्शनरी से और हिस्ट्री से वाकिफ हैं, उन्होंने जो बाकिर का लफ्ज बयान किया है वो ये कि चीरने वाला। बाकिर यहाँ पर जो लफ्ज आया है वो उलूम के और मालूमात, नॉलेज और मारिफत के सीने चीरने वाला। ये जो है इमाम आली मकाम की इसी लकब के साथ शोहरत हुई है। मुअर्रखीन और मुहद्दिसीन अहले सुन्नत की किताबों में भी जहां पर आपका नाम मुबारक आया है तो नाम मुबारक मोहम्मद बाकिर ज्यादातर नाम मुबारक आया है, और लफ्ज बाकिर की वजाहत भी अहले सुन्नत उलमा ने भी की है। ये अलग बात है कि वक्त और हालात के साथ साथ पेट्रो फाइनेंस की वजह से बहुत सी अपनी ही जो इल्मी मीरास रही है हमारे भाइयों के पास, अब वो उसके मुनकिर होने लगे हैं, अब वो उन हदीसों को भी तोड़ मोड़ने लगे हैं, काटने लगे हैं, आधा हिस्सा बयान करना आधा हिस्सा ना। खैर, ये जाहिर होता रहता है, जहां कमजोरियां होती हैं वहां पर चीजों को छुपाया जाता है, चीजों को बयान करने नहीं दिया जाता, पब्लिक तक आने नहीं दिया जाता। बहरहाल ये एक मसला है हमारे सामने। अच्छा, यहां से वो सवाल शुरू होता है जो एक पीएचडी करने वाले एक जवान ने किया था कि इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम को नॉलेज, मारिफत, शिनाख्त के और उलूम के सीना चीरने वाला कहा जाता है। तो सवाल जो हुआ था वो ये था, तो क्या इमाम अलैहिस्सलाम की कोई ऐजाद या इन्वेंशन भी है? इमाम ने कोई ईजादात किए हैं कि इसलिए आपको बाकिरुल उलूम कहा गया? जाहिर है जब वो लफ्ज ईजाद की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो उसी पैरामीटर्स और साइंसी उसूल जवाबी तो आज जो नॉलेज का एक स्टैंडर्ड बनाया गया है इंटरनेशनली, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरेट और इस तरह के उसके लिए एक लेवल और स्टैंडर्ड फर्ज किया गया है, उसको पेश नजर रखकर वो ये बात कह रहे थे। हमें पहले जो है याद रखना चाहिए कि ये बजात खुद जो इस अंदाज में जब हम सवाल सोचते हैं या हमारे दिमाग में उठेगा तो ये सवाल एक मफरूजों और फर्जी पैमानों पर मबनी होगा, एक फर्जी पैमानों और उसूल जवाबित के ऊपर इसकी हमने फाउंडेशन रखी हुई है। क्योंकि इस किस्म के सवालात के मुताबिक यानी इल्म किसी चीज को दरियाफ्त करने वाले और ईजाद करने वाले को हम साहेब इल्म, बामारिफत और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। एक अजम्पशन है, एक यानी क्योंकि जो मफरूजे हैं जो साइंस जिसके ऊपर बेस करती है वो कोई कतई या मुस्तकिल पोजीशन नहीं रखते हैं। इसीलिए एक टर्मिनोलॉजी जो फिलोसफर्स के यहाँ भी मशहूर है और इस्तेमाल होती है और स्टिल आज भी है, वो मुस्बितियत जिसको हम कह सकते हैं अरबी, फारसी और उर्दू में, या पॉजिटिविज्म जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, एक फलसफियाना इस्तेला है जिसके मुताबिक कहते हैं कि कोई भी रिसर्च और कोई भी चीज का इदराक करना और समझने का जो वाहिद रास्ता और मेथड है वो एक्सपेरिमेंटल जो साइंस है या तजुर्बाती साइंस का तरीका है। मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं ले जाऊंगा आपको, लेकिन इसको एड्रेस करना हमारी न्यू जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। बस तजुर्बे पर मबनी जो नुक्ते नजर है वो क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी सही जो वैलिड मेथड ऑफ रिसर्च और अंडरस्टैंडिंग है वो एक्सपेरिमेंटल साइंटिफिक मेथड है या एक्सपीरियंस बेस्ड अप्रोच है। ये कह रहे हैं कि इसको हम कह सकते हैं कि फलां शख्स ने ईजाद किया है, उसने एक चीज डिस्कवर किया, उसने ये दरियाफ्त कर लिया, और उसको अगर हम नोबेल प्राइज दे दें या उसको एक बहुत बड़ा आलिम के तौर पे मान लें तो कहें उसने एटम के सीने को चीरा, उसने जो है बिग बैंग के जो है उसको दरियाफ्त कर लिया और अभी पता नहीं और क्या क्या चीजें आने वाली, उसने जो है इंटरनेट ईजाद कर लिया, बहरहाल वो जो है वो बंदा है जिसने इस इल्म के सीने को चीरा और डिस्कवर करके हमारे सामने दिया, तो वो जो है एक बड़े टाइटल हासिल करने का जो है हकदार है, उसे नोबेल प्राइज भी दिया जाए, उसे पूरी एक यूनिवर्सल प्राइज भी, वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, साइंस की तारीख में अगर हिस्टोरिकली हम देखें कि तारीख में पहली बार ये जो टर्मिनोलॉजी है पॉजिटिविज्म और इस तरह की, ये फ्रांस से शुरू हुई है। अलबत्ता फ्रांस ने बहुत कुछ शुरू किया है और बहुत कुछ है सोशोलॉजी और रिलीजियस उसके अंदर भी। और अगर जो अगस्त, या पता नहीं आप इंग्लिश उसमें किस तरह पढ़ेंगे, फ्रेंच में अगस्त कैंट या अगस्त कांट जिसको अरबी और फारसी में हम कहते हैं, 18वीं सेंचुरी में इसने सबसे पहले, ये माहिर इमरानियात या सोशियोलॉजी के एक्सपर्ट था, इसने सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की। और बैकग्राउंड जो था, आपको मालूम है कि यूरोप के अंदर जो है दीन से लोग बेजार हो रहे थे यहाँ पर, क्योंकि दीन दीन की वजह से तालिबानिज्म, आज के हमारे जो इस्लाम में तालिबानिज्म सिस्टम है या दाइशी सिस्टम, उस तरह का एक कंसेप्ट इनके पास था, लोगों के अकायद की तफ्तीश करना, खवारिज की तरह लोगों के चीजों को मापना, उनकी फिक्र को नापना, उनकी कोई भी अगर साइंसी ईजाद होती है तो उसके अगेंस्ट एक मूवमेंट बनाना वगैरह वगैरह। ये एक ऐसे सोसाइटी के अंदर से ये चीजें निकली हैं, तो जाहिर है कि अब ये जो चीजें निकलेंगी वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट होंगी। मैं ज्यादा आपका वक्त इसके ऊपर मैं नहीं लूंगा, जाहिर है कि एक एशियन जेशन का एक खास वो होता है, लेकिन आप माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हो, साहिबान इल्म फहम फरासत हैं, तो मेरे लिए ये जुरत होती है कि मैं इस तरह के इश्यूज को भी डिस्कस करूं। अच्छा, बस इसका बैकग्राउंड असल में एक मटेरियल तसव्वुर और कंसेप्ट, मटेरियलिस्टिक कंसेप्ट के जरिए से ये सामने आया है कि जिसमें साइंस को सिर्फ तजुर्बाती उलूम और मटेरियल दुनिया तक महदूद किया गया, और लफ्ज नॉलेज को, इल्म को गैर मादी जो है उलूम के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं हुए, और उसको एक खास मटीरियलिस्टिक नॉलेज के अंदर महदूद किया गया। बस जो बुनियादी तौर पर अगर खुद साइंस को भी हम देखें तो आप जानते हैं कि तजुर्बाती साइंस या एक्सपेरिमेंटल साइंस जिसको कहा जाता है, उसकी बेस और जो फाउंडेशन है वो रीजन या कुजालिटी या सबब या इल्लत और वजह के उसूल पर जो है कायम है, प्रिंसिपल ऑफ कुजालिटी जिसको ये कहते हैं। और ये जो है तजुर्बाती साइंस कभी भी साबित नहीं कर सकी है कि किसी चीज की असल और हकीकी वजह क्या है। अच्छा, ये सारी बहस करने की क्या जरूरत थी, मैं आपको साइंस तो नहीं पढ़ा सकता, आप मुझसे ज्यादा इसमें एक्सपर्ट हैं और आप मुझे इस मजमून को बेहतर तरीके से टीच कर सकते हैं। असल में ये बैकग्राउंड देने की वजह ये थी कि हम यहाँ समझना चाहते थे कि जब आप किसी साइंटिस्ट की किसी दरियाफ्त को और ईजाद को देख के मरऊब हो जाते हैं, और फिर उस मरऊबियत के साथ और उसी नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग, बैकग्राउंड, सारी चीजों को उसी पैरामीटर्स और स्टैंडर्ड्स को लेकर आप आते हैं और अपनी हस्तियों को, अपने अइमाए मासूमीन अलैहिस्सलाम की तालीमात को, कुरान की आयात को परखने लग जाते हैं, तो यहाँ पे गलती शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अच्छा, हमारे इमाम उलूम के सीने चीरते थे, तो फिर जो है कोई ईजाद है, कोई दरियाफ्त है, कोई चीज डिस्कवर किया था, यानी पहले साइंसी उसूल और स्टैंडर्ड्स को एक्सेप्ट कर चुके हैं और एक फर्जी स्टैंडर्ड हमने नॉलेज का बना लिया है, और उसके बाद फिर हम उस स्टैंडर्ड पे अपने इमाम को परखना शुरू कर देते हैं, या उसकी किसी रिवायत को या आयत को या कुरान मजीद को। तो ये एक गलत तरीका है, सबसे पहले तो ये चीज है जिसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। दूसरा जो अहम मसला इसके अंदर ये है कि इंसानी जिंदगी सिर्फ तबीयत या नेचर और मादा या मटेरियल तक महदूद नहीं है, गैब को आप बिल्कुल ही निगलेक्ट करते हैं, नेचर के बाद भी कोई आफ्टर नेचर भी है, मेटा नेचर या मेटा फिजिक्स भी है, उस पर यकीन नहीं है, इसलिए आप कहते हैं जो नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ नेचर है या मटेरियल है, इसी के ऊपर है सब कुछ, इसी के अंदर से हम नॉलेज को समझेंगे या नहीं समझेंगे। तीसरा जो इसके अंदर एक पॉइंट में बयान करना चाह रहा हूं वो ये है कि अंबिया, नबियों और मासूमीन अलैहिस्सलाम लोगों को ऐसी सच्चाइयां सिखाने आए हैं जो इंसान अपनी खुद ताकत से कभी नहीं सीख सकता, उसको डिस्कवर नहीं कर सकता है, उसके लिए एक और जो है हाई लेवल के वसीले और टूल की जरूरत है जिसको हम वही कहते हैं। वही के बगैर इंसान बहुत सी चीजों को और सच्चाइयों को और हकीकतों को जो उसके लिए इस दुनिया और उसके बाद में के लिए भी एक लाइफ टाइम, यानी ये जो लाइफ टाइम है ये नहीं, वो जो हकीकी लाइफ टाइम है जिसके मिलियन ट्रिलियन ईयर्स आप लगा काउंट कर सकते हैं, और उससे अनलिमिटेड किस्म की लाइफ है, क्योंकि खुदा ने नहीं बताया है कि हमने जन्नत में कब तक रहना है। फरमाया खालिदी नफी आबादा कब, फरमाया ट्रिलियन साल, उससे ऊपर आप गिनती कर लें, उस तक के लिए फायदेमंद देने वाली चीजें हैं जो मैं और आप अपनी अकल रिसर्च एक्सपेरिमेंटल रास्तों से हम कभी भी वो डिस्कवर भी नहीं कर सकते हैं, कभी उस तक हम पहुंच भी नहीं सकते हैं। कुरान मजीद की वो जो आयत मैंने तिलावत की और इमाम का कौल की तरफ इशारा किया, सूरह निसा की आयत 113 113 फरमाते हैं, व अंजल अल्लाह अलैकल किताब वल हिकमा व अल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फज़लुल्लाह अलैक अज़ीमा। भाई कह रहे हैं कि ये जो किताब और हिकमत और नबुवत जो हमने अता की है, इसका काम क्या है कि आपको साइंसी तजुर्बात करके लेबोरेटरीज में आपको बुलाकर एक्सपेरिमेंट करवाए, जो काम आप खुद कर सकते हैं, आपको जमीन से तेल निकाल के दे दे, जो आप काम आप खुद कर सकते हैं, आपको जो है खला में रॉकेट भेजने की एजुकेशन दे दे, एक लेबोरेटरी बनाए, एक बहुत बड़ी टेलीस्कोप ईजाद करे। इसलिए ये पैगंबर आया है, जो काम कर सकते हैं तो कहेंगे पैगंबर आपकी जरूरत नहीं थी, तो हम कर सकते थे, ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा, आस्ता आस्ता एक्सपेरिमेंट करके हम पहुंच कर रहे हैं ये काम। उस वक्त भी लोग अपनी जिंदगी गुजारने के जो टूल्स थे वो टूल्स बनाते थे, हर सेक्शन के अंदर आप देखें, आप जब से इंसान की जिंदगी का आगाज हुआ है वो जो स्टून और पत्थरों के हिजरवी दौर में थे, उस वक्त भी तो इंसान के पास वसाइल बनाना शुरू किया था इंसान ने। फरमाता है कुरान, अल्लमकुम मालम तकुन तालम, उस चीज का की तालीम देने आया है जिसे आप खुद हासिल नहीं कर सकते हैं। नबियों की जिम्मेदारियों में से एक यूं ही है कि वो उन्हीं मसाइल की तालीम देते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अहम तरीन है, सरनविस्ताज है, और इंसान खुद उसको जान नहीं सकता है। कुरान मजीद साफ साफ कह रहा है, सूरह बकरा आयत नंबर 151, मैं आपकी जहमत खत्म कर रहा हूं, अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलु अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुम अल-किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून मा लम तकूनू तअलमून। ये उन इल्म और हकीकतों और सच्चाइयों के बारे में आगाह करते हैं नबी और मासूम अलैहिस्सलाम, जिन तक इंसानी सोच एक्सपेरिमेंट तजुर्बात साइंस टेक्नोलॉजी अपनी तमाम तर तरक्की के बावजूद रसाई से कासिर है। और ये सिर्फ और सिर्फ नबुव्वत वही विलायत और इमामत के जरिए से ही हासिल हो सकता है। इसीलिए जब बुजुर्ग सहाबी जनाब जाबिर ने इमाम आली मकाम पांचवें इमाम पाकरुल उलूम से मुलाकात की, और किस्सा आप लोगों ने बारहा सुना है, उस वक्त जो है उस बुजुर्ग सहाबी से इमाम आली मकाम ने कुछ जुमले इरशाद फरमाए। क्योंकि हम लोगों का प्रॉब्लम यह है कि हम यकीन करते हमें मुश्किल पेश आती है, बहुत से लोग अकल इस्तेमाल नहीं करते और अकली दलाइल की तरफ भी जाते नहीं है, उनको फौरन कोई शॉर्टकट रास्ता चाहिए तो मौजजा चाहिए होता है या कोई अनहोनी चीज चाहिए होती है। तो ये मौजजे दिए इसीलिए हैं कि साबित करें भाई मैं वो कर सकता हूँ जो आपके साइंसदान कभी भी नहीं कर सकेंगे। ये मौजजा है, मौजजा का मतलब ये है कि कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता, ये कॉपीराइट सिर्फ मासूम के पास है या जो है नबियों के पास है या वलियों के पास है या उसके पास है जिसे अल्लाह जो है दे दे उस मकाम तक पहुंचे कि विलायत का एक अदना दर्जा हासिल करे हम में से कोई इंसान भी। फरमाया जाबिर से, वल्लाह या जाबिर लकत आतानी अल्लाह इल्म मा काना वमा हुआ काइन इला यौमिल कियामा। इमाम फरमाते हैं, खुदा की कसम ए जाबिर, अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ हो चुका है, जो कुछ हो रहा है, कयामत तक जो कुछ होगा उसका इल्म अभी से अता किया है। ये इमाम है, इमाम आली मकाम के इल्म की हदें नहीं है, हुदूद नहीं है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम मॉडर्न एजुकेशन पढ़ने के बाद उस पूरी लाइफ उसमें लगाने के बाद दीन की तरफ हमारी एक जज्बाती इमोशनल अटैचमेंट होती है, वो इमोशन जब आस्ता आस्ता कम हो जाते हैं तो जब अकल के सामने चीजें आती हैं तो क्योंकि अकली तरीके से दीन को अंडरस्टैंड नहीं किया है तो इमोशनल अटैचमेंट एक जनरेशन दो जनरेशन नहीं जाती। इसीलिए पहले भी मैंने कहा है, इमोशंस कभी भी लीडिंग रोल नहीं रखते हैं। हाँ, इमोशंस अकल के लिए सपोर्टिव रोल जरूर प्ले करते हैं और उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस और अहमियत है, लेकिन ये लीड नहीं कर सकते हैं। और हम साउथ एशियन इमोशनली बहुत ज्यादा होते हैं, सोचते बहुत कम है हम लोग। अगर आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं जर्नल बात कर रहा हूँ। लिहाजा अल्लाह ताला ने मुझे जो कुछ हो चुका है, जो कुछ हो रहा है और जो कुछ कयामत तक होगा, उसका इल्म दिया है। आतानी अल्लाहु इल्मा मा कान व मा हुवा काइनुन इला यौमिल कियामा। लिहाजा इल्म का वो हिस्सा जिसे तजुर्बाती या अकली या बेसिक चीजों से, जिसको हम बदही कहते हैं, उसके जरिए से हासिल किया जा सकता है, और इल्म का दूसरा हिस्सा जो सिर्फ और सिर्फ वही के अलावा मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन है मेरी अकल की परवाज एक लेवल तक को, मेरा एक्सपीरियंस एक तो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने वाली नॉलेज और जो एक्सपीरियंस है वो एक लेवल तक हो, लेकिन इल्म का वो हिस्सा जो बराह रास्त वही से ताल्लुक रखता है, वो कभी भी हम खुद से तजुर्बात के जरिए से हासिल नहीं कर सकते हैं। मसलन क्या हो सकता है? वो तौहीद के बारे में बहुत सी हकीकतें, कयामत के बारे में क्या होगा वहां पर, आप देखें जो जो बिग बैंग तक पहुंच गए हैं उनसे आप सवाल करें, जी उससे पहले तो कह रहे हैं वो छोड़ दे, गोलमोल बातें करते हैं वहां पर, क्योंकि कह रहे हैं बस लिमिट इधर तक थी हमारी। वो भी अभी क्लियर नहीं है, 100% एक्यूरेट नहीं है कि ये जो इस वक्त थ्योरी है ये बिग बैंग वाली, ये कोई 100% एक्यूरेट वही की तरह की थ्योरी है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी और थ्योरीज आई हैं और तब्दीलियां आई हैं उसके अंदर, लेकिन अभी जो इस वक्त है हम उसकी बात कर रहे हैं। तौहीद की बहुत सी सच्चाइयों को, कयामत और मौत के बाद की दुनिया के बारे में नबियों और वलियों के अलावा कोई नहीं बता सकता है, लेकिन नबियों और वलियों का असल काम इंसान को इंसान बनाना है, इंसान को मशीन बनाना नहीं है। इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम सोसाइटी को इंसान बनाना चाहते थे, खुदा के बंदे और इंसान और उनके अंदर मौजूद आला तरीन अशरफ तरीन मकाम इंसानियत को बरकरार रखना चाहते थे। उनको उनकी असली फितरत जो कि पाक थी, ताहिर थी, इलाही थी, नूरानी थी, खुदाई थी, उस फितरत को बाकी रखना चाहते थे जो इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम थे। इसीलिए तज़किया व तरबियत है, आदर इंसाफ पर मबनी एक सोसाइटी कायम करना है, जिसके लिए इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम और दीगर अइमा अलैहिमुस्सलाम अपना सब कुछ उसके लिए निशावर कर दिया, किसी तजुर्बे के लिए निशावर नहीं किया है, किसी तेल जमीन से बरामद करने के लिए या गैस निकालने के लिए नहीं किया है, खला में रॉकेट भेजने के लिए सारी लाइफ नहीं लगा दी है। यानी कि ना लगाओ, यानी कि नहीं करो, करो, ये हम कर सकते हैं, हमें खुद छोड़ दिया, कहा ये अकल दिया है हमने, खुदा दादी सलाहियतें दी है, कायनात में भी चीजें रखी है, तुम्हारा काम है, जो काम तुम नहीं कर सकते वो ये है कि जमीन में अदल इंसाफ पर मबनी निजाम कायम करना, इंसान की इन रियल और हकीकती हकीकी आजादी, जिस्मानी आजादी भी, रूहानी तौर पर, मानवी तौर पर, फिक्री तौर पर आजादी। आज देखें फिक्री तौर पर कितनी कौमें गुलाम है, हद ना जो है रिलीजियस इंटरप्रिटेशन के अंदर भी लोगों के गुलामी हमें नजर आती है, उस जगह से मेटेरियलिस्टिक दुनिया से इंटरप्रिटेशन आती है हमारे दीन की, और कहते हैं ये है आपके असली दीन की तशरी, औरत को लेकर ये तशरी है, मर्द को लेकर ये तशरी है, सोशियोलॉजी के बारे में ये है, आपकी फैमिली सिस्टम के बारे में कहते हैं ये फिक्री गुलामी, इससे आजादी दिलाना चाहते हैं अंबिया जो आए हैं। खुलासा, दुनिया व आखरत की अच्छाई, सआदत का ताल्लुक नबियों और अइमा अलैहिस्सलाम की बुनियादी तालीमात का उसूल है। किसी दिन वक्त मिला तो इस मौजू के ऊपर मजीद डिटेल में जाएंगे। पढ़ते हैं इमाम हुमाम की सीरत तय्यब ताहिर की तरफ। इमाम की अगर जाती जिंदगी और हयात तय्यब ताहिर को हम जो जाहिरी तौर पर हमारे सामने इंसानों के सामने रही है उसको अगर देखें, क्योंकि माह रजब है, छठे इमाम अपने वालिद के बारे में बहुत सारी जो है गुफ्तगू फरमा चुके हैं, किताबों के अंदर मौजूद है, जिसे बयान होना चाहिए, पढ़ना चाहिए, नई जनरेशन को बताना चाहिए। फरमाते हैं छठे इमाम, फरमाते हैं अपने वालिद के बारे में, कान अभी कफीर दिक्र लकत कुन तो अमशी माहू व अन्नहू यदकुरुल्लाह, मेरे बाबा जान यानी इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम कफीर जिक्र थे, यानी जिक्र थे कौन सा जिक्र, अल्लाह का बहुत ज्यादा जिक्र करते थे। ये शायराना जुमले नहीं है, माजरत, हकीकी शायर के लिए वो जो मुबालगाती शायरी होती है, गैर हकीकी मुबालगात की जाती है, ये خطیبانہ جملہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے جو بیان ہو رہا ہے. کان ابی کثیر الذکر، دائم الذکر تھے، ہمیشہ ذکر میں ہوتے تھے، چلتے ہوئے، کھانا کھاتے ہوئے، لوگوں سے حتیٰ گفتگو کرتے ہوئے ذکر اللہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے. یہ امام کی سیرت میں سے. اسی لیے ہم سے بھی کہا ہے کہ ہر وہ کام جسے آپ بسم اللہ کے بغیر شروع کریں یا جسے اللہ کے نام کے بغیر کریں، کہا کہ وہ کام صحیح نہیں ہوگا، نتیجہ خیز ہو سکتا ہے دنیا میں کہیں نہیں بڑا سکسیزفل ہو گیا، بڑا بینیفٹ بھی مل گیا، بھائی اس نتیجے کو آپ پھر لمٹ کر دیا میٹریلسٹک سوچ سے دنیا تک، نتیجہ اس طرف بھی تو ہے، بات میں بھی ہے، جنریشن تک اس کے اثرات ہیں. تو ظاہر ہے جو ہے، اس لیے ذکر اللہ ائمہ کی سیرت میں یہ نظر آتا ہے. ذکر اللہ جو چھٹے امام فرماتے ہیں، میرے والد ذکر اللہ کا. پھر امام فرماتے ہیں، دیکھیں یہ ہمارے لیے تربیتی ایک زبردست اصول ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں صبح فجر کے بعد امام عالی مقام گھر میں کیا کرتے تھے، اپنی فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور ہم کیا کرتے ہیں. ہم میں سے زیادہ تر لوگ، خاص کر جو یورپ میں رہتے ہیں، میں ان سے مخاطب زیادہ ہوں. امام چھٹے امام فرماتے ہیں میرے والد کیا کرتے تھے گھر میں صبح فجر کے بعد، کیا کرتے تھے. وَكَانَ يَجْمَعُنَا فَيَعْمُرُنَا بِالذِّكْرِ حَتَّى تَطْلَعَ الشَّمْسُ وَيَعْمُرُ بِالْقِرَاءَةِ، یعنی قراءت القرآن. ومن كان يقرا منا ومن كان لا يقرا امره بالذكر. صبح و فجر کے بعد ہم سب کو اکٹھا کرتے تھے، نماز شمازیں اپنی پڑھ لی ہیں، نماز شب پڑھ لیا ہے، سارا کچھ ہو گیا ہے، اکٹھا کر لیا ہے، اور کہتے تھے کہ اب شروع کرو قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا. یہ کون شروع کرا رہے ہیں؟ قرآن ناطق، خود قرآن ہے، خود بولتا قرآن، خود جیتا جاگتا قرآن. اسی کتاب کو کسی انسان کامل و اکمل و اتم میں ڈال دے تو وہی امام بن جاتی ہے وہ کتاب. اگر اسی امام کو کسی کتاب کامل و اکمل و اتم و کیا کہتے ہیں طاہر و مطہر میں ڈال دے تو قرآن مجید بنتا ہے. فرماتے ہیں یعمر بالقرآت القرآن، قرآن کی تلاوت. اور غور سے سنیں، ایک باریک نقطہ ہے یہاں پر، ہماری فقہی تعلیمات بھی اس کے اندر ہیں. فرماتے تھے من کان یقرأ منا ومن کان لا یقرأ امرہ بالذکر. اگر گھر میں کوئی شخص یا کوئی گھر کا فرد اور ممبر قرآن نہیں پڑھ سکتا تھا، بلکہ میں لفظ استعمال کروں گا آپ سمجھ جائیں گے، قرآن نہیں پڑھ سکتی تھی شرعی مسئلے کی وجہ سے، ظاہر امام کی اچھی خاصی فیملی تھی، فرماتے تھے ذکر کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو. اس لیے ہمارے فقہی مسائل میں ہیں کہ خواتین اپنے مخصوص ایام میں کیا کریں کہ وہ جو روحانیت و معنویت و اس کی کیفیت کو ہاتھ سے جانے نہ دے، تو کہیں ذکر پڑھیں، بہت ساری دعائیں ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں. یہ امام عالی مقام ہے جو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ امام کے گھر کے اندر کی ایکٹیویٹیز کیسی ہوتی تھی، امام کی صبح کیسی ہوتی تھی، امام کے گھرانے کی صبح، امام کے گھر والوں کی صبح، امام کے فیملی ممبرز کی صبح. ہم دیکھیں ہماری صبح کیسے ہوتی ہے، ہم یہاں سے سیکھ سکتے ہیں. آج رجب کی پہلی رجب کی جو ہے کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، امام کی ولادت ہے، تو امام سے عہد کرتے ہیں، یا امام یہ آپ کرتے تھے آج سے ہم بھی کریں گے گھر کے اندر، آج سے ہمارے گھر میں اسی طرح ہمارا فیملی نظام یہی ہو، ہم اسی طرح چلیں گے. سماجی اور دینی زندگی میں آپ دیکھتے ہیں، دیکھیں امام کا جو زمانہ تھا وہ مختلف ایک فکری انحرافات کا دور تھا، آئیڈیالوجیز بہت زیادہ، ایزمز آئیڈیالوجیز بہت زیادہ پیدا ہو چکی تھی. میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا، کیونکہ کئی بار اس موضوع کے اوپر ہم جو ہے پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. لہٰذا امام کی امامت کے دوران بہت سارے جو مسائل پیدا ہو رہے تھے وہ مکاتب اور وہ اسکول آف تھاٹ تھے. جو خطرناک مسئلہ یہ تھا کہ اسلام کے نام پر وجود میں آئے تھے، یعنی ایسے اسکول آف تھاٹ، ایسے مکاتب فکر جو یہ کہ غیر مسلمان کی فائٹ کرنا آسان ہوتا ہے، نہیں، وہ اسلام کے نام پر قرآن کی تفسیر، وہیں حدیث کی تفسیر، قرآن مجید وغیرہ وغیرہ، قرآنی عقائد، اخلاقیات، فلان فلان کے نام پر وجود میں آیا تھا، اور ہر کوئی ایک اپنی ایک دین کی انٹرپریٹیشن رکھتا تھا، جیسے آج ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس بھی اس طرح کی انٹرپریٹیشنز موجود ہیں. نہ کہیں فوراً دوسروں کی طرف نہ دیکھیں، ہمارے شیعوں میں بھی ہے، اپنے گریبان میں دیکھیں نا، اصلاح تب ہوتی ہے، یا اصلاح خود سے شروع ہوتی ہے ہر مسئلے میں. تو ہم اپنے گریبانوں میں دیکھیں، ہمارے پاس بھی تشریحات ہیں. مثلاً آج آپ جشن منا رہے ہیں، بعض اسی جشن کو منانے کے کتنے انداز ہیں ہمارے پاس، کیا سارے کے سارے کو ہم سٹیمپ کر سکتے ہیں کہ سارا صحیح ہے، ہر جو جشن منایا جاتا ہے وہ صحیح کیا جاتا ہے؟ یا مثلاً گزشتہ غدیر کے اندر बाज जगहों में जो बाकायदा जो है एक अजीब व गरीब किस्म की हालात हुए, या जो है हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत के दिन जो जिस तरह की हरकतें हुई बाकायदा दुल्हने बना के, ये भी तो तरीका है गम मनाने का और जश्न मनाने का, ये भी एक आइडियोलॉजी। इसके बेक पर भी कुछ लोग दलाइल रखते हैं ना, कुछ लोग प्रमोट भी करते हैं मेंबर पे आके, कुछ डिफेंस भी करते हैं, कुछ दलाइल भी देते हैं, ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट बनता जा रहा है, बन चुका है ऑलमोस्ट। तो इमाम के दौर में भी सेम इस तरह की सिचुएशन थी, हर कोई अपनी तशरीह रख रहा है और हर एक का दावा यह है, गौर कीजिएगा, हर एक का दावा यह है कि हम मुसलमानों की ट्रू लीडरशिप है, हम सही लीड कर सकते हैं, हम सही गाइड कर सकते हैं, हम इस्लाम को मुसलमानों को बेहतर तरीके से हम निकाल सकते हैं। अच्छा, मोटे मोटे ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, मोटे मोटे कुछ के नाम लेते हैं, जैदिया, अभी इस वक्त जो यमन में जैदी है या डिफरेंट है, इसके किसी दिन वक्त मिले तो इसके ऊपर डिटेल में बात करें, बड़ी तब्दीली आई है इनके अंदर, ये समझे शिया इशनाशरिया है, जबरी जबर के कायल, वो लोग जो कहते हैं हाँ जी हम मजबूर हैं, हम आपकी एक्टिविटी में मजबूर हैं क्योंकि खुदा ने हमें इख्तियार नहीं दिया है। तफवीजी, इसके मुकाबले में कुछ लोग कहते नहीं खुदा ने हमें फ्री ऑफ हैंड दिया है, कोई बिल्कुल हम आजाद है 100%, खुदा का कोई अमल दखल नहीं है, खुदा ने खल्क किया और हमें छोड़ दिया, जैसे कि खिलौना होता है, खिलौने को बनाने के बाद अब उसका बनाने वाले का कोई लिंक ही नहीं उस खिलौने के साथ, वो खिलौना खुद ही काम कर रहा है, जैसे गाड़ी बना के छोड़ दी, अब गाड़ी बनाने वाला 24 घंटे उसके ऊपर तो खड़ा नहीं रहता है, कह रहे इस तरह से हम मुजस्मा, मुजस्मा ने जिस्म से, यानी खुदा के जिस्म के कायल होना, ये तौहीद जब खराब होगी किसी सोसाइटी में। बनी उमैया, आप पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ बहुत सी महफिलों में, आप मुसलसल सुनने वाले सामीन है, बनी उमैया की एक पॉलिसी ये थी कि लोगों को तौहीद टीच करो लेकिन शिर्क टीच मत करो, क्योंकि वो खुद मुशरिकाना काम करते थे, मुशरिकाना हरकतें करते थे, मुशरिकाना उनकी आइडियोलॉजीज थी, तो वो कहते थे फिर आइडेंटिफाई हो जाए लोगों को कि शिर्क क्या चीज है, बॉर्डर का पता चल जाए, तौहीद और वहदानियत और शिर्क का बॉर्डर पता चलेगा, ये तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसलिए वो मना करते थे एजुकेशन ना दी जाए। यहाँ सूरत हाल ये बनी कि खुदा के लिए जिस्म के कायल होने लग गए, जैसे कि हमारे भाइयों के पास बाद अजीजें भी हैं इसी बुनियाद पर, बहुत से लोग ये ख्याल रखते हैं कयामत के दिन सोने की कुर्सी पे नऊज़ु बिल्लाह अल्लाह बैठेगा, जहन्नम कहेगा और डाल दो और डाल दो, हल मिन मजीद, भरेगा नहीं तो पाँव डाल देगा अल्लाह सुबहान व तआला, कहेगा अच्छा अच्छा मैं भर गया, अब मुझे जरूरत नहीं, मजीद गुनाहगारों के लिए गुंजाइश खत्म हो गई, मैं सैर हो चुका हूँ, मेरा पेट भर चुका, अजीब व गरीब किस्म की खुदा के जिस्म के। और फिर गुलाक, गाली, गुलू करने वाले, यानी गुलू मतलब क्या, आइमा अलैहिस्सलाम को उनकी मलकूतिया तो नूरानियत तो विलायत तो इस्मत से निकाल कर खुदा के लेवल पर पहुंचा देना, तौहीद और विलायत को जम कर देना, एक बना देना, और कहना कि खुदा वही नऊज़ु बिल्लाह इमाम है, इमाम वही खुदा है, ये कम बेश ये सोचे आश है या नहीं है। इमाम के दौर में इमाम ने इन सब के साथ मुकाबला किया है, इल्मी तरीके से, दलाइल के साथ, इसके लिए पूरी एक प्लानिंग की इमाम ने, एक प्लान के तहत इमाम ने बात किया, इमाम ने भी इसी तरह जो है काम किया। अमल के मसले को कमरंग करना और अकीदे को गुलात का एक जो मसला था वो ये कहते थे कि अमल की जरूरत नहीं है, जब आपने विलायत अली कबूल किया है तो आपको अमल करने की जरूरत नहीं है, अगर आप अमल में छोड़ भी देते हैं ना, करते भी नहीं है और आपका करेक्टर भी खराब है, आप गुनाहगार भी हैं, शफात भी मिलेगी, नजात भी मिलेगी, सब कुछ हो जाएगा। अजीब गरीब किस्म का, यानी मतलब एक शिया बैड करेक्टर, शिया ऐसा जिसका किरदार बुरा हो। इमाम अली मकाम ने मुकाबला किया, फिर इमाम के जुमले हैं, आप ये सुने इमाम के जुमले क्या फरमाते हैं, मा शियातुना इल्ला मन इत्तक़ल्लाह व अता'हु, कहता है हमारा शिया सिर्फ वही हो सकता है जो तकवा इख्तियार करे, यानी सही करेक्टर रखे और खुदा की बंदगी करे, इताअत करे। फिर इमाम जो है एक जुमला फरमाते हैं, ये हदीस सुने, ये आज मैं और आपके लिए फिट आने वाली है। हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि जब हम कोई हदीस सुनते हैं या इमाम का कोई नसीहत आमेज कौल सुनते हैं, इसकी वजह से हम में से बहुत से लोग नसीहत नहीं हासिल कर सकते, अपनी इसलाह भी नहीं कर सकते, हम दूसरों की तरफ लेके जाते हैं उस मसले को अपने गरेबान में जानने के बजाय, हम समझते हैं अच्छा देखो जी ये तो फलानी वलानी करते, हम तो नहीं करते, ऐसा नहीं है। इंसान को ऑनेस्टी के साथ देखें, खुद के साथ तो इंसान को ऑनेस्ट होना चाहिए ना, अपने आप के साथ तो इंसान को कभी, सबसे बेवकूफ इंसान वो होगा जो खुद को धोखा दे दे, खुद को उसके साथ चीट करने वाला सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान है। तो हमें खुद के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए। इसीलिए फरमाया कि अपने गिरेबानों में जान को। अच्छा, क्या फरमा रहे इमाम? फरमाते हैं तीन किस्म के शिया बयान करते हैं इमाम इमाम बाकर अलैहिस्सलाम। फरमाते हैं शिया तुना सलासा असनाफिन, कहते देखो इस वक्त सोसाइटी में हमारे तीन ग्रोह या तीन टाइप के शिया हैं। सिन्फुन याकुलून अन्नास बिना, कहते एक ग्रुप वो है जो हमारे नाम पे खाता पीता है, हमारे नाम पे मजे कर रहा है। वह सिन्फुन कज़ुजाजू यनुम्मु, कह रहे हैं कि एक ग्रुप जो है ना ऐसा है जो बड़े नाजुक हैं, फैंसी शिया हैं वो असल में। फरमाते हैं बड़े थोड़ी सी उनके ऊपर शियत की वजह से, इमामत की वजह से, विलायत की वजह से, मजहब की वजह से, दीन की वजह से, दीनदारी की वजह से, अपने फराइज पर अमल करने की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, थोड़ी सी वो मुश्किलात में जाते हैं, थोड़ी सी सख्ती होती है, तो ये फैंसी शिया फौरन टूट जाते हैं। जुजाज कलब से, जुजाज कहते हैं शीशे को, शीशे को कहते हैं, शीशा मिजाज है, मतलब क्या वो फैंसी किस्म के शिया है, डेकोरेशन पीस अच्छे हैं ये, लेकिन अगर इनके ऊपर थोड़ा आप बोझ डालेंगे ना टूट जाएंगे ये, क्योंकि ये फौरन इधर उधर हो जाएंगे, साइड पे कहेंगे कोई शॉर्टकट रास्ता दो यार, ये तो हमेशा जो है ना हम कहते हैं ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी हुम्स भी दो, नमाज भी पढ़ लो, ये भी करो, ये भी करो, तब तुम हमारे शिया हो, हम तुम्हें शफात दे देंगे। कह रहे हैं तो इसका तो फिर मजा ही नहीं रहा, हम तो है कि हमें फ्री हैंड दिया जाए और अब हमारी शफात करें। ये मेंटालिटी रखने वाले फैंसी शिया का जुजाज। وَسِنْفٌ كَالذَّهَبِ الْأَحْمَرِ كُلَّمَا أَدْخَلَ النَّارُ أَزْدَادَ جَوْدًا। عجیب جملے ہیں، معصوم کی کلام، معصوم کا کلام۔ اس لیے فرمایا ہمارے کلام کو سناؤ، کیونکہ ہمارے کلام میں ایک نورانیت ہے، حسن ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، کشش ہے، مغناطیس کی طرح۔ عجیب جملے ہیں، کیا تعبیر ہے، کتنی زبردست قسم کے الفاظ ہیں۔ آدمی جب پڑھتا ہے اور سنتا ہے کانوں میں رس آ جاتا ہے، खास करके जिनको अरबी तक कहता है। वसिंफुन एरे ग्रोशियों का वो एक दहाबिल अहमर, कह रहे हैं कि वो उस सोने की तरह हैं। कुल्लमा अदखल النار ازداد جودا, जिसको आप जितना आप आग की भट्टी में डालेंगे ना इतना ज्यादा वो कुंदन बनता जाएगा, इतना ज्यादा अहमर का लफ्ज इस्तेमाल किया, और सुर्ख और मजबूत होता चला जाएगा। ये खालिस सोने की मानंद मजबूत शिया है, जितनी सख्तियों की आग इन पे पड़ेगी, जितनी मुश्किलात इन पे इन्हें निखर के सामने आएंगे, सख्तियों के मुकाबले में डट के सामने आएंगे, पक्के होते जाएंगे और मजबूती आएगी। न ये कि फैंसी शियों की तरह टूट जाएंगे, न ये कि देखेंगे कि कुछ बेनिफिट अब जो है ना इमाम के नाम लेने से और शियत के नाम लेने से कुछ फायदा माली नहीं हो रहा है, ना कोई खुम्स की तरफ से कोई हिस्सा आ रहा है, ना कुछ जक़ात का आ गया, ना इमाम की तरफ से कोई वजीफा आ गया, तो कहा कि नहीं भाई हम तो हमारा तो गुजारा नहीं चल रहा है इसके, कुछ ये ना वो शिया ना, ये मजबूत लोग हैं, पक्के लोग हैं। अच्छा, हमसे मतलूब क्या है? डेफिनेटली क्लियर है, इमाम कह रहे हैं कि फैंसी शिया भी नहीं बनना, लालची शिया भी नहीं बनना। कौन सा शिया बनना? वो जो कज़्ज़ाबिल अहमर है, वो जो खालिस सोने वाले शिया है, जिनको जितने आग में डाला जाए, जितनी मुश्किलात की भट्टी में जाए ना, विलायत की खातिर, इमामत की खातिर, और पक्के होते जाए, मजबूत होते जाए, हमें ये शिया बनना है। इमाम असल में ये फरमाना चाहते हैं। आप जानते हैं तकरीबन 95 ईयर्स, यानी बल्कि मोर देन 95 ईयर्स, 100 ईयर्स, आपको मालूम है कि हदीस पर पाबंदी थी। अच्छा, हदीस पर पाबंदी थी, एक किताब लिखने पर पाबंदी थी। भाई किताब लिखने पर पाबंदी क्यों थी? इसलिए कि डर था ये बनी उमैया को कि कहे लोग जो है ना कागजों पे किताबी शक्ल में हदीसें ने लिख लें कुरान के तफसीर के नाम पर, तो ये किताब पर भी पाबंदी लगाई थी उन्होंने ना हदीस। ये कितना टाइम रहा? 100 ईयर्स, अल्लाह के रसूल की वफात के बाद 100 ईयर्स तक, एक सदी, एक सेंचुरी पूरी हदीस पर पाबंदी, किताब पर पाबंदी है। अब इमाम के दौर में थोड़ी सी कदरी आजादी है, 5 से 6 से ज्यादा हुक्मरान इमाम के जमाने में जालिम बादशाह आए और गुजरे हैं। इमाम फोकस करते हैं हदीसों के ऊपर, इसलिए आप देखते हैं 1 लाख 10 लाख बाजोगों में पता नहीं एक एक सहाबी हैं जो 50-50 हज़ार हदीसें जिसने नकल की हैं। इमाम इतनी हदीसें इमाम और पुराते हैं, देखो इसको लिखो, किताब किताब के ऊपर ताकीद करते हैं, किताब तालीफ करने पर, किताब जो है तसनीफ करने के लिए बहुत ताकीद करते हैं, लिखो इन हदीस को। मैं आखिर में सुनाऊंगा एक हदीस को जो इसी हवाले से इमाम ने बयान फरमाया है। शिया जो सोसाइटी थी इस 100 ईयर्स के अंदर, क्योंकि बड़े झटकों से गुजरी थी, खासकर वाकई करबला जैसा एक तख झटका अहले तशी ने खाया था। मैं यहाँ पे जुमले कोट करना चाहूंगा, हमारी इस वक्त सदी की इल्मी तरीन, बाशूर तरीन, बाबसीरत तरीन, मेरे ख्याल में ये दावा अगर मैं कर दूं तो बिल्कुल गलत नहीं, और मेरे पास यही प्रूफ है और यही इसी चीज का मैं इत्मीनान रखता हूं जो मैंने पूरी दुनिया को जो है मैं के अंदर देखा है, क्योंकि ऐसी शख्सियात छुपती नहीं है। आलिम तरीन, समझदार तरीन, बाबसीरत तरीन, जमान और मकान और दीन को दुरुस्त समझने वाला, दुरुस्त क़यादत करने वाला, दुरुस्त लीडिंग करने वाला हमारी सदी में जो इस वक्त शख्सियत असर गईबत इमाम ज़माना में मौजूद है, वो हजरत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली अल-खामेनाई अल-हुसैनी अल-हफ़ीज़ुल्लाह है, रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब, जो शॉर्ट फॉर्म हम यूज करते हैं। उनके कुछ जुमले हैं पांचों इमाम के बारे में, मैं चाहूंगा कि वो कोट करूं, मैं दफ़ातन उसको लिख के लेकर आया। फरमाते हैं, इमाम बाकिर अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा काम, उनकी सबसे हसास जिम्मेदारी सही इस्लाम, कुरान की सही तफसीर, इलाही अहकाम, लोगों के लिए मजहबी अहकाम को सही तरीके से बयान करना था। खुलासा किया दो लाइनों के अंदर, इतने बड़े फकीह हैं, जाहिर दरिया कूजे में समा लेते हैं। इमाम बाकिर ने अपनी 20 साल जिंदगी के दौरान शियों के बयानिए को यानी नरेटिव को इस्लामी व अलवी निज़ामी, इस्लामी और अलवी निज़ाम हुकूमत का जो कि बयानिया था, नरेटिव था, हर जगह पहुंचा दिया। यानी जो इस्लामी हुकूमत का एक कंसेप्ट उन्हीं खुलफा के जरिए से लोगों के जहन में 100 साल के अंदर बैठ गया था कि यही इस्लामी हुकूमत मतलब ये है, बादशाह शराब भी पी ले, बादशाह बैड करेक्टर हो, जालिम हो, लेकिन अगर जुमा पढ़ा ले वो कर लो ठीक है, इट्स ओके बाबा कबूल कर लो, ये इस्लामिक वर्जन है, यही इस्लामी हुकूमत। राबर फरमाते हैं इमाम ने इसके मुकाबले में अलवी जो निज़ाम था, हुसैनी जो निज़ाम था, उसका जो है बयानिया जो हुकूमत का था या तर्ज हुकूमत था उसको पहचानवाया। जाहिर हुकुमरानी तो की नहीं कहें पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो रहा था, लेकिन जो आइडियोलॉजी है, जो हुकूमती उसूल व ज़वाबित हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा, आइन कैसे बनेगा, किस तरह हुकुमरान की क्या जिम्मेदारियां हैं, ब्यूरोक्रेसी की क्या जिम्मेदारियां हैं, सोसाइटी को किस तरह डिजाइन करना है, इकोनॉमी को किस तरह वो करना है, कैसे अदल इंसाफ का निज़ाम बनेगा, वगैरह वगैरह, कहने की इमाम बराबर फरमाते जगह जगह पहुंचा दिया। बहुत से लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, रावर फरमाते हैं बहुत से लोगों को इस बयाने की जानिब मुतवज्जे करवाया। लिहाजा अर्ज करें कि दो जो बुनियादी काम थे सोसाइटी को वापस असली और हकीकी इस्लाम की तरफ और दीन की तरफ और सोसाइटी के जो मुस्लिम एक सोसाइटी होनी चाहिए थी, इस्लामी सोसाइटी, जो मुस्लिम सोसाइटी शायद मुनासिब लफ्ज नहीं, इस्लामी सोसाइटी जो होनी चाहिए थी, मुस्लिम सोसाइटी तो आज भी है या मुसलमान इकट्ठे रहते हैं, मुसलमानों की अक्सरियत रहती है मुस्लिम सोसाइटी, इस्लामी सोसाइटी, मजहबी सोसाइटी, कुरान और इतरत के उसूलों के मुताबिक वाली सोसाइटी, ये तो नहीं तो कुछ चार मुसलमान एक जगह इकट्ठे रहेंगे तो हम उसको इस्लामी सोसाइटी कहेंगे, ये तो नहीं कह सकते हम, ना किसी गवर्नमेंट को हम इस्लामी कह सकते हैं सिवाय एक के। लिहाजा जो है इस्लामी सोसाइटी की जो फाउंडेशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो एक सदी में टोटली बदल चुका है। मतलब इसका क्या मतलब है, स्ट्रक्चर बदल चुका है, मसलन फाउंडेशन बदल दिया है, क्या मतलब, ये गाड़ी गाड़ी टर्मिनोलॉजी मौलाना साहब यूज कर रहे हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं, क्या होता है वो किसी सोसाइटी की फाउंडेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है भाई, एक माशरे में कौन सी वैल्यूज ज्यादा पाई जाती हैं, लोग उसको एक्सेप्ट कर चुके हैं, उसके मुताबिक चलते हैं और वो एक कॉमन जो है एक रूल और रेगुलेशन अखलाकियात मॉरलिटी वगैरह के तौर पर एक्सेप्ट किया गया। मिसाल के तौर पर इस्लाम से पहले की जो सोसाइटी की फाउंडेशन थी, जो स्ट्रक्चर था, वो अरब जाहिली कल्चर के जो स्टैंडर्ड्स थे उसके ऊपर कायम था, जहां स्टैंडर्ड्स और उसूल जवाबित कबाइली थे। इस्लाम ने इस कबाइली स्टैंडर्ड्स को चेंज किया और इंसानी और इस्लामी उखुवत की सोच पर डाला। मसलन वो सोसाइटी जिंदगी और मौत के बारे में किस तरह सोचती थी, मसलन अपने और पराये का स्टैंडर्ड क्या था, किसको वो कहते थे अपना है, किसको कहते थे पराया है, उनके पास क्या स्टैंडर्ड था, शख्सियत का मतलब क्या था उनके पास, किसी को पर्सनैलिटी कहेंगे तो किस पैमाने पे उस शख्सियत को, किस क्राइटेरिया में उसको तोलेंगे, मापेंगे और कहेंगे यार ये पर्सनैलिटी, ये हमारी सोसाइटी में एक बड़ी शख्सियत है, इसलिए कि उसकी उम्र ज्यादा है, उसको पैसा ज्यादा है, उसका कबीला बड़ा है, वो बड़ी पोस्ट में रहता है, ये मैयार है, स्टैंडर्ड है, या क्या स्टैंडर्ड है, बदल दिया था ना इस्लाम ने। एक सदी में क्या हुआ था, रिवर्स करने की कोशिश की बनी उमैया ने। अब इमाम आली मकाम के सामने थोड़ी सी आजादी निस्बी मिली है, आपके वालिद बुजुर्गवार ने भी बहुत सारी जहमत की है कि लोग हिदायत पाए। इमाम अब कोशिश कर रहे हैं कि वापस सोसाइटी के अंदर वो पैरामीटर्स, वो मैारात, वो स्टैंडर्ड्स वापस आ जाए। लिहाजा इमाम की पूरी कोशिश है कि इस्लामी दीनी सकाफत तहजीब वापस लौट के आए। इसलिए दो बुनियादी काम किए, मैं आपकी जहमतें तमाम कर रहा हूं, वैसे भी हमारी खुश बहसें होती हैं और उसके ऊपर ये कि लंबा भी हो जाए, तो मुझे मालूम है आप वैसे इंशाल्लाह कि आप ऐसे नहीं है, लेकिन बहरहाल बहुत सी समातों पे नागवार भी गुजर सकता है। दो बुनियादी काम किए इमाम ने, दो सेक्टर्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया। नंबर एक, इदारों की तामीर करना, मजहबी सकाफती इदारों, या जिसको आप कहें मदारिस, जिसको आप कहें हौज़े इल्मिया, जो भी नाम दे दें हमें उससे लेना देना नहीं है। नंबर दो, अफराद की तरबियत की, यानी मुबल्लिगीन, दानिश्वरों का तबका, इंटेलेक्चुअल्स, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स बताए जो उस वक्त की सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं। एक यानी ऐसे इंटेलेक्चुअल नहीं जो चार दीवारी के अंदर बैठकर सुबह शाम तस्बीहां पढ़ते रहते हैं और कहते हैं मैंने 1,000 साल की नमाज पढ़ी, उसने 2,000 साल, ये इंटेलेक्चुअल नहीं है जो अपनी सोसाइटी में क्या हो रहा है उसको पता ही नहीं है। वो कहे मुझे नहीं पता तीसरी गली में क्या होता है। वो एक टीवी चैनल पे एक मुसलमान जो है, एक मौलाना साहब की बात आ रही थी, वो कह रहा था मुझे नहीं पता हमारे मुल्क का सदर कौन है। वो इसको अपनी फखरिया तौर पर पेश करता था, यानी मैं गैर सियासी आदमी हूँ खुद, ये तो फिर ये तो इंसान नहीं रहे आप, एक उम्मत की लीडरशिप और क्यादत की बातें कर रहे हैं आप। इतना बड़ा टीवी चैनल आपने पता नहीं मदीने मुनव्वरा के नाम से बनाया हुआ। लिहाजा ऐसे दानिश्वर जो सोसाइटी को अंडरस्टैंड करते हैं, चैलेंजेस को समझते हैं, कल्चर की खामियों को समझते हैं कि सोसाइटी किस डगर पर डाली गई है, पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं उसको समझते हैं और फिर उसके हिसाब से एजुकेट करना शुरू किया सोसाइटी को उन्होंने। ऐसे मदारिस जो कि जिंदा हों, बकौल आलम इकबाल, जिसके अंदर पढ़ने वाला जाकर गला तो गोंड दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं, ऐसे मदरसे जो जिंदा करने लोगों को, मुर्दे जाए तो जिंदा होकर बाहर आ जाए। वही जो कुरान मजीद ने कहा इस्तजीबू लिल्लाह वलिर रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, अल्लाह के रसूल और अल्लाह के नुमाइंदों की आवाज पर लब्बे को, क्योंकि ये जिंदगी अता करते हैं। अल्लाह के नुमाइंदों के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक मदरसे, इदारे, सकाफती सेंटर जिंदगी अता करते हैं। लिहाजा ये दूसरा था कि इसलिए आप देखते हैं मदीने मुनव्वरा में इमाम का सेंटर है, हौजा है, मदरसा है, जो भी नाम देते हैं, कल्चर सेंटर है, सकाफती सेंटर है, जिसमें मुसलमान गैर मुसलमान सब आते हैं, सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, हर सेक्टर के ऊपर एजुकेशन दी जा रही है, इंटेलेक्चुअल्स तैयार हो रहे हैं, मुबल्लिगीन, ऐसे इंटेलेक्चुअल्स नहीं जो कॉपी पेन लेके एक गोशे में अपने घर में बैठा रहे, मैं बहुत बड़ा रिसर्च हूं, मैं तो यही काम करता हूँ, नहीं, गली गली जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ टाइम पे रमजान में, मुहर्रम में, दिगर दिगर मुनासिबतों में बेचते हैं कहीं पर जहां जरूरत होती है। जैयद, जबरदस्त कैरेक्टर वाइज जबरदस्त, दुनिया के लालच में नहीं पड़े हुए हैं, दुनिया की मिनिमम पर इक्तफा करने वाले मुबल्लिगीन, ये नहीं कि अपने लिए प्रोटोकॉल और स्टेटस मांगते हूँ, ये नहीं कि मैं अगर आया हूं तो मेरे लिए 50 गाड़ियां लेकर मुझे वेलकम करो, इसलिए नहीं कि मुझे टिकट देना है तो आपने बिल्कुल जो है ना बिजनेस क्लास भी छोड़कर आपने वीवीआईपी किस्म की ट्रीटमेंट, ये नहीं। वो मुबल्लिगीन जो जिनके पास एक विजन है, जिनके पास एक हदफ है, जिनके पास एक मकसद है, उस मकसद के लिए और इमाम के उस मिशन के लिए अपने आप को वक्फ कर चुके हैं, वो कहता है जैसे भी हालात है मैं गुजर जाऊं यहाँ से। ऐसे इंटेलेक्चुअल हैं, आगाह हैं, समझदार हैं, होशियार हैं, बेदार हैं, जिससे मिलते हैं उसके अंदर बेदारी पैदा करते हैं। ये जो राहबर ने फरमाया हजरत आयतुल्लाह अल-उज़्मा सईद अली खामेनेई ने कि इमाम ने जगह जगह तक पहुंचा, कैसे, मौजज़ाती तरीके से तो नहीं पहुंचाया, इमाम को तो मदीने से उठा के क्या उसके उस हदूद के अंदर बंद कर दिया गया था, तो कैसे इमाम तो सफर नहीं किया, फिर कैसे पहुंची है ये पैगाम, हवाओं के जरिए से, कबूतरों के जरिए से, मौजज़ाती तरीके से, या इनके जरिए से, इन इंटेलेक्चुअल दानिश्वरों और उलमा के जरिए से। ये हमारे लिए माशाल्लाह नहीं है, आज हम ये काम नहीं कर सकते, यहाँ भी सेंटर्स हैं आप लोगों के पास, आपके सेंटरों के अंदर जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो विजन होना चाहिए, जो ख्याल होना चाहिए, वो इसी तरह का नहीं होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह की है। कूफे में आपने बनाया इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा जबरदस्त किस्म का, कुम में, रे में, तेहरान का जो मुजाफाती इलाका है जहाँ शाह अब्दुल अजीम उसी से तो निकले हैं, उसी को तो शाह अब्दुल अजीम ने बाद में हैंडल किया है, खुरासान में मदारिस और रोजाए इल्मिया इंस्टीट्यूट जो भी आप नाम दे रहे हैं। शख्सियात कैसी, अब मैं नाम ले लूँ आपका वक्त ज्यादा लग जाएगा, ऑलरेडी कूफे में एक बड़ी हर जगह देखें 4-5 बड़ी बड़ी शख्सियात उस वक्त मिलेंगी, बाद में तो दर्जनों के हिसाब से निकले, अबान इब्ने तगलब जैसी शख्सियत है जिसको अहले सुन्नत भी मजबूर है एक्सेप्ट करें। शाह अब्दुल अजीम जैसी शख्सियात मैंने अर्ज किया उसी मदरसे से निकली हैं। फिर जो है पूरा सिलेबस डिजाइन करा रहे हैं दीनियात का, यानी हाई लेवल पे, यानी कि दीनियात वो जो हमारे दीनियात कहते हैं आप उस बच्चों वाले उस पे ना कोर्स पे ना चाहिए, दीनियात यानी हाई लेवल पे इज्तिहादी लेवल पर पूरा एक सिलेबस हदीस के सिलेबस तदवीन हदीस जिसको हम कहते हैं चैप्टर टू चैप्टर ऐसे हदीस की किताब लिखो ऐसे बन इज्तिहाद के नए नए रास्ते सिखा रहे हैं। 70,000 से हदीसें तो सिर्फ अबान इब्ने तगलब ने नकल किया है और इसी तरह जुरारा इब्ने आयुन हैं जो 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 कि क्रिश्चियन बैकग्राउंड रखते हैं जिनके वालिद मुसलमान हुए और जुरारा की बहन उम्मुल अस्वद, हमारी माएँ बहनें सुन ले मैंने इसके ऊपर डिटेल में बात की, उम्मुल अस्वद के जरिए से इमाम के करीब हो जाते हैं जुरारा और फिर जुरारा इब्ने आयुन बनते हैं। और पता है जुरारा के बारे में क्या फरमाया, ये सिर्फ सलमान एक अकेला नहीं है, ये सिर्फ अम्मार तक नहीं है क्योंकि हमारी मालूम नहीं है ना सलमान और अबू ज़र से आगे हम गए नहीं है। फरमाते हैं लौला जुरारा ज़ायात मीरासु अबी, छठे इमाम फरमाते हैं जुरारा इब्ने आयुन के बारे में कहते हैं अगर जुरारा ना होता ना मैं और मेरे वालिद की इल्मी मीरास जाया हो जाती, जुरारा ने बचाया इस फकीह ने इस आलिम ने इस इंटेलेक्चुअल ने। मोहम्मद इब्ने मुस्लिम सकफी कूफे के अंदर 46,000 हदीसें नकल की हैं इसने और भी बहुत सारी। अबू बसीर जो कि अंधे थे, और बस ये मौजजा सुनाऊं और एक मौजजाती मसला भी है बसीरत और उसके लिए भी है, अबू बसीर जो कि अंधे थे अच्छा इमाम के हुजूर तशरीफ लाए हैं पांचों इमाम के हुजूर और कुछ इस तरह के क्वेश्चंस किए, शॉर्ट करता हूँ कि आप इमाम मासूम हैं तो अइम्मा तो जो है तसरुफ कौन ही रखते हैं हमारी सिंपल जबान में, तो यकीनन आप तसरुफ कौन ही रखते होंगे। खैर खुलासा जो है इमाम आली मकाम ने हाथ फेरा और अबू बसीर की पीनाई वापस आ गई। वो बेचारा मादरजात जो है बचपन से ही अंधा था, दाएं बाएं देखा अबू बसीर के लिए फर्स्ट टाइम अबू बसीर दुनिया को देख रहे हैं इन आंखों से। फिर फरमाया अबू बसीर रीजन भी कजाए रब रहे ना चाहेंगे, या आप चाहते हैं आंखें आपके पास रहे, यानी रब ने जो आपको दिया है उस पर राजी रहना चाहते हैं, यानी बगैर किसी बगैर आंखों के अंधे ही रहना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि चले इमाम ने शफा दिया है तो अब मैं आंखें। अब अबू बसीर की बसीरत देखें, बसीर इसीलिए बसीर है ना, अबू बसारत नहीं है, अबू बसीर है, बसीरत रखता है बसारत हो या ना हो। फरमाया नहीं इमाम, जो मेरे रब ने जैसे मुझे बनाया है ना मैं वैसा ही रहना पसंद करूंगा। यानी क्या मतलब, ये वो है खुदाया तेरी रजा पे मैं राजी, मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी, ये वो मकाम है किसका, अबू बसीर का। कहते हैं इमाम मुझे वापस पुरानी हालत में डाल दो, आसान नहीं है, मैं कहूं आपने सुन लिया, ये कोई अलग दुनिया के लोग हैं, कोई अलग इनकी स्पेशल कोई तखलीक हो गई थी, खमीर कोई अलग सा डाला था फरिश्तों ने इनके अंदर, या इनके अंदर रूह कोई अलग सी गई है, वही है वही हमारी तरह के लोग हैं, अबू बसीर जैसे लोग इस लेवल पे पहुंचे हैं। कह रहे नहीं वापस मुझे आंखें अंधे को क्या, कहते ना मुहावरा क्या है उर्दू में, अंधे को क्या चाहिए दो आंखें, तो इस अंधे को तो दो आंखें नहीं चाहिए। अकबर, ये हमारे आईमाए अकली बहसू। अब वक्त नहीं है, मैं आखिर में वो हदीस सुनाता हूँ और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, और ये आरजू रखता हूँ कि इमाम अली मकाम की बरकतों से हम सब लोगों की, हम बंदगान मोहताज है जाहिर है, कमजोर भी हैं, खुलकर इंसान ज़ईफा भी हैं, जरूरतमंद भी हैं, हम तो सुई धागे के लिए भी मोहताज हैं, तो इमाम की बरकतों से इंशाल्लाह की सबकी हाजात कबूल हो जाए। छठे इमाम फरमाते हैं अरिफ मनाजिल शिया अला कद्र रिवायातिहिम व मारिफतिहिम फइन्नल मारिफतु हिय दराया लिर्रिवाया وبالدرايه للروايه يعلو المؤمن الى اقصى درجات الامام। किसी शिया की क्वालिटी और मकाम और मंजिलत को जानना है तो ये देखो कि वो कितनी हदीसें जानता है। इस जुमले से आप समझ जाएं हदीसों पर पाबंदी थी एक सदी तक, लिहाजा लफ्ज हदीस इस्तेमाल किया, हदीस का मतलब दीन शिनासी, कितना वो दीन जानता है और उस पर अमल करता है और दीन की मारिफत रखता है, यानी इन हदीसों को समझता भी है, दिराया का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी कितना दीन को समझता है और कितनी दीन के बारे में मालूमात रखता है। किसी भी शिया की अगर क्वालिटी और मकाम को जानना है तो पहले ये चेक करो भाई कितनी दीनी मारिफत है उसकी, दीन को रसूमात के तौर पर लिया है आबा व अजदाद से, या दीन को मारिफत के साथ समझा है और समझ के चल रहा है दीन के ऊपर, इतनी ही उसकी मकाम और क्वालिटी और मंजिलत होगी। आरिफ मनाजिल अशिया अला कद्र रिवायातिहिम एक मारिफतिहिम फइन्नल मारिफा हिया दराया लिर्रिवाया वबिद्दरायति लिर्रिवाया यअलुल मोमिन आला से है बुलंद हो जाना इला अक्सर दर्जात ईमान, ईमान के आखिरी दर्जा तक पहुंच जाता है। क्योंकि मारिफत का असल मतलब क्या है? रिवायत को समझना, मासूमीन को के फरामीन को समझना और उस पर अमल दरामद करना। परवरदिगार आलम से 10 दुआ होते हैं, मदद चाहूंगा अगर ज्यादा वक्त लिया है कि परवरदिगार आलम इस इमाम बाकिरुल उलूम अल अव्वलीन वल आखिरीन के सदक़े में परवरदिगारा हमारी मारिफत दीनी में इजाफा फरमा। परवरदिगारा हमें भी आला दर्जात तक पहुँचने के लिए इमाम के फरमान के मुताबिक रिवायत और दरायत को हासिल करने की तौफीक इनायत फरमा।